SBS हिंदी के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए वर्तमान हालात पर सरकार को चेताया है। चीफ जस्टिस रमना ने शनिवार को न्यायपालिका को कैसे मजबूत किया जाए विषय पर बोलते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि सत्ता को संविधान द्वारा निर्धारित विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन को बनाए रखना चाहिए और लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघना चाहिए। उन्होंने अवैध गिरफ्तारियों, हिरासत में दी जा रही यातनाओं और मौतों पर पुलिस की आलोचना की। साथ ही उन्होंने सरकार को कानून विभाग की राय लिए बिना अपने निर्णयों को हड़बड़ी में लागू करने का दोषी भी बताया। उन्होंने अदालतों में मुकदमों के बढ़ते अंबार की एक बड़ी वजह सरकार का सबसे बड़ा मुकदमेबाज होना बताया।
इट इज वेल नोन एंड एक्नॉलेज्ड फैक्ट दैट गवर्नमेंट आर द बिगेस्ट लिटिगेंट्स अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स इट इज नियरली 50% ऑफ द केसेस इफ पुलिस इन्वेस्टिगेट्स प्रॉपरली फेयरली इफ इलीगल अरेस्ट एंड कस्टोडियल टॉर्चर कम्स टू एन एंड देन नो विक्टिम विल हैव टू अप्रोच द कोर्ट्स। Abiding by law and constitution is the key for to good governance. However, this is often ignored. The opinions of law departments are not sought in the rush to implement executive decisions. Lack of people, special public prosecutors and standing counsels and the government leaders in courts is one of the major concerns which needs urgent remedy. The decisions of the court are not implemented by governments for years together. The resultant contempt petitions are a new category of burden on the courts, which is a direct result of defiance by governments. Deliberate inaction by the governments, despite judicial pronouncements, are not good for the health of democracy.
इसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में न्याय की समझ को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए अदालतों में स्थानीय भाषा के समावेश पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों से पुराने पड़ गए कानूनों को निरस्त करने का अनुरोध भी किया।
साथियों, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा।
चीफ जस्टिस रमना द्वारा चिन्हित किए गए पुलिस के रवैये का जीता जागता उदाहरण एक ही दिन पहले असम में सामने आया था। बारपेटा जिले की एक अदालत ने असम पुलिस को गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को झूठे आरोप में पकड़ने पर न केवल करारी फटकार लगाई बल्कि मुश्किल से अर्जित प्रजातंत्र को पुलिस राज में तब्दील करने का गंभीर आरोप भी लगाया। अदालत से बेल मिलने के बाद जेल से छूटते ही श्री मेवाणी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला।
देखिए, मुझे न्याय तंत्र पे कल भी भरोसा था, आज भी है, परसों भी रहेगा। आज नहीं तो कल बेल मिलना ही था। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि बीजेपी की सरकार है और मोदी साहब नीरव मोदी को नहीं पकड़े, मेहुल चौकसी को नहीं पकड़े, विजय माल्या के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और एक ट्वीट करने पर जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी करते हैं। अब क्या मैसेज देना चाहते हैं?
पंजाब राज्य की पुलिस ने पटियाला जिले में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड को पकड़ने का दावा किया है। पंजाब पुलिस ने रविवार सुबह छापेमारी के दौरान बरजिंदर परवाना की गिरफ्तारी राज्य की राजधानी चंडीगढ़ के पास स्थित मोहाली से की। पटियाला रेंज के पुलिस महानिरीक्षक मुखविंदर सिंह चिन्ना ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी साझा की।
बरजिंदर परवाना मेन एक्यूज्ड उसनों साड़ी टीम ने मोहाली तो गिरफ्तार कर लिया। परवाना पटियाले लिया के उसकी फॉर्मल अरेस्ट पुलिस ने पाई है और उसको मजिस्ट्रेट को पेश करके उसका पुलिस मार लिया जाएगा। टोटल 6 अक्यूज हैव बीन अरेस्टेड सिंस लास्ट इवनिंग। उन्होंने सारे का अभी पुलिस मार लैके उन्होंने को पूछ गिछ करा उस तो बाद ही फर्दर कोई किसी तरह का कंस्पायरेसी एंगल जिहड़ा निकलता है दैट विल बी पार्ट ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन।
गौरतलब है कि पटियाला में शिवसेना द्वारा निकाले गए खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण हो गई थी और कई सिख संगठन और हिंदू कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे। दोनों ओर से तलवारें भी लहराई गईं और पथराव भी किया गया। पूरे मामले को सुलझाने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। उत्तरी भारत में गर्मी की भयंकर लहर के चलते केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर नेशनल एक्शन प्लान पर ध्यान देने को कहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी को लागू करें, ज़रूरी दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता, आईवी तरल पदार्थ, आइस पैक, ओआरएस और सभी आवश्यक उपकरण, पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता, स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। लेकिन कई राज्यों में कोयले की आपूर्ति में कमी होने से बिजली संकट भी गहराने लगा है, जो गर्मी की मार को असहनीय बना रहा है। केंद्र और विपक्ष की राज्य सरकारें इस संकट को लेकर आमने सामने हैं। केंद्र सरकार ने कोयले की आपूर्ति करने के लिए 750 यात्री रेलगाड़ियों को रद्द कर कोयला ढोने के लिए लगाया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल इस संकट के पीछे भाजपा की कांग्रेस विरोधी नीति को जिम्मेदार बताते हैं।
ये इसकी जो बुनियाद जो है इस क्राइसिस की, ये आज की नहीं है, ये तब की है जब आपको याद होगा कि बीजेपी ने और सीएजी ने एक रिपोर्ट दी थी कि कोल ब्लॉक्स गलत तरीके से दिए गए और 185,000 करोड़ का नुकसान कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किया। कोर्ट ने भी बात मान ली, सारे कोल ब्लॉक कैंसिल हो गए। अगर वो कोल ब्लॉक्स कायम रहते तो आज के दिन वो कोल की कमी भी नहीं होती। दिक्कत ये हुई कि वो जो कोल ब्लॉक्स कैंसिल हो गए, वो जो ऑक्शन का प्रोसेस था दोबारा उसकी नीलामी करने का, वो आज तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आज के दिन कोई प्राइवेट सेक्टर का कंपनी कोल ब्लॉक लेने को तैयार ही नहीं। तो जो 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 भी कोल ब्लॉक्स कैंसिल थे, आज के दिन वो कोल ब्लॉक्स ऑपरेट ही नहीं हो रहे क्योंकि ऑक्शन ही सारी फेल हो गई। अगर वो ऐसा नहीं करते, ये 1,85,000 करोड़ का जो एक हवा खड़ा किया था वो बिल्कुल ही बेबुनियाद था। आज के दिन किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि ऐसा कोई नुकसान हुआ है, उसको कहते थे प्रेजेंटेड लॉस। ये बात इनको समझनी चाहिए, इनकी सारी पॉलिसी नीति फेल हो गई और इनके इन्होंने जान के फेल करवाए, क्योंकि ये तो उस समय चाहते थे कि इनको राजनीतिक फायदा हो। राजनीतिक फायदा तो हो गया लेकिन देश को नुकसान हो गया।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में बिजली संकट की वजह केंद्र सरकार द्वारा बकाया पैसा ना दिया जाना बताया है।
अगर आज भारत सरकार हमें पैसा दिया होता तो 25 क्या 50 रुपया पर यूनिट में बिजली खरीद के ग्रामीणों को और शहरवासियों को दे सकते। लगभग 1,30,000 करोड़ से अधिक का बकाया का हम लोगों ने भुगतान करने के लिए भारत सरकार को लिखा है।
लेकिन केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी इस संकट को हल्के में लेते हुए इसका कारण अर्थव्यवस्था का बेहतर होना और उत्पादन में आई तेजी बताते हैं।
डिमांड भी बढ़ गए क्योंकि देश का और प्रदेश का भी इकोनॉमी अच्छी तरह से पकड़ गई, इसलिए जहां हम 3.3 बिलियन 3.2 बिलियन करते थे वो 3.5 बिलियन पर डे यूनिट गए है। हमारे आज भी 21-22 मिलियन टन थर्मल पावर प्लांट्स में है, एवरेज में बता रहा हूँ, और 72 मिलियन टन कोल इंडिया और जो कैप्टिव वगैरह वगैरह है उधर है, वो 10 दिन का है, इसीलिए थोड़ा कुछ लोग बहुत शॉर्ट है बोलते हैं, शॉर्टेज है ऐसे बोलते हैं, लेकिन रिप्लेनिशमेंट कंटिन्यूअसली होता रहेगा।
इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।